कहाँ तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा। जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे।
ओम शांति। जीवन के अनंत सागर मैं एक चैतन्य ज्योति हूं, सभी स्थिर शरीर की सारी हलचल रोक देंगे। मन एकाग्र एक अंतर्यात्रा एक मौन यात्रा स्थूल देह में विराजमान चेतना की वो शक्तिशाली किरण मैं हूं। एक एक दिव्य ज्योतिर्मय आत्मा भ्रुकुटी के मध्य केंद्रित एक तेजोमयी बिंदु ज्योति का एक कण मुझ आत्मा से संपूर्ण शरीर दिव्य प्रकाश फैल रहा है। मैं आत्मा इस देह की मालिक हूं। मन बुद्धि संस्कार मेरे अधीन है। मैं राजा हूं। एक नजर अपने ही व्यस्त जीवन पर मैं जा रहा हूं एक डार्क टनल और चलते चलते जगमगाते दृश्य दिखाई दे रहे हैं। ये मेरे जीवन के दृश्य है। वो बचपन वो घर वो स्कूल वो बचपन की यादें और आगे बढ़ रहा हूं। वो कॉलेज वो दोस्त वो उमंग वो उत्साह और आगे दिखाई दे रहे वो सारे लोग जिनके संपर्क में मैं आया। दिखाई दे रही है वो सारी अप्रिय घटनाएं जो जीवन में हुई। दिखाई दे रहे हैं वो सारे खुशी के पल। मैं एक यात्री इस टनल से गुजर रहा हूं जिसके दोनों तरफ ढेर सारे दृश्य दिखाई दे रहे हैं और चलते चलते न मालूम मैं क्यों थक गया हूं, क्यों अंधेरा सा छा गया है जीवन। बाहर तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, सारे वैभव संपदा सुख सुविधाएं रिश्ते नाते स्टेटस, पर फिर भी एक खालीपन, फिर भी मन की उदास है जो पतझड़ क्यों। और आगे और अब पहुंच गया हूं वहां जहां ये टनल ये सुरंग खत्म होती है। प्रकाश दिखाई दे रहा है, दिव्यालोक का अनुभव। एक नई समझ एक नया दृष्टिकोण। यहां से देख पा रहा हूं जो कुछ जीवन में हुआ वो सब क्यों हुआ, जो दुख आया उसका क्या कारण था, जो बेचैनी थी उसका क्या कारण था, जो गलतियां हुई क्यों हुई। शायद अपने आप से ही दूर चला गया था। अब खड़ा हूं वहां पर जहां से सब कुछ दिखाई दे रहा है। मन शांत हुआ है, एक अलौकिक स्थिरता। एक अलौकिक मौन। संपूर्ण साक्षी आई स्टैंड एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर। द एंटायर पैनोरामिक व्यू ऑफ लाइफ, द स्ट्रगल, द स्ट्राइफ, I see everything. A new understanding has descended upon me. A new light, a new radiance. I am the spark of luminosity. Calm, perfectly still. Tranquility is my nature. And the more calm I become, the more powerful I am. With this calmness, let me begin a new journey. Let me embark upon a new odyssey of life. Om Shanti. विश्व इतिहास में 5वीं शताब्दी में 5th century एक घटना हुई थी। ब्रिटेन की सरजमी पर बार बार आयरलैंड के आक्रांत आक्रमण करते थे। वो समय था जब रोम की सभ्यता गिर रही थी और एक बार एक 16 साल का लड़का वो आक्रांत आए, वो डाकू आए और गुलाम बनाने के लिए ब्रिटेन से ले गए आयरलैंड में। वहां पर उन डाकुओं ने उसे बेच दिया एक चरवाहा के रूप में। वो लड़का 6 साल तक आयरलैंड की भूमि में था और वो दिन बहुत कठिन थे और वो बहुत दुखी दिन थे क्योंकि उसे बहुत काम करना पड़ता था। वो अपने माँ बाप से दूर था, घर से दूर था, उसे पढ़ाई करनी थी परंतु पकड़ा गया और बेच दिया गया, स्लेव ट्रेड। और एक दिन जब भेड़ बकरिया हाँक रहा था और नींद लग गई, अचानक से एक आवाज आई, पैट्रिक गेट अप, पैट्रिक गेट अप, पैट्रिक उठो जाओ, समुद्र तट पर एक नाव तुम्हें लेने आई है। वो भागता है 200 मील की दूर की दूरी पर, देखता है वास्तव में एक नाव आई है, पर वो लोग उसे लेने को तैयार नहीं होते। फिर उसी आवाज को याद करता है, शायद वो भगवान की आवाज थी, और फिर अचानक वो लोग राजी हो जाते हैं और वो नाव में बैठता है। 2 साल लगते हैं अपने घर पहुंचने के लिए। ब्रिटेन घर आता है और माँ बाप बहुत खुश होते हैं और वो भी बहुत खुश होता है, पढ़ाई जारी करता है अपनी। कालांतर में दिखाया है वो एक पादरी बनता है और फिर एक रात उसे एक स्वप्न आता है। स्वप्न कहो या एक आवाज। पैट्रिक गेट अप, पैट्रिक गेट अप, यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ। वो आयरिश लोगों के बीच, आयरलैंड में रहने वाले लोगों के बीच जाओ और उनका कल्याण करो। आज तक वहां कोई गया नहीं था, कोई धर्म धर्मावलंबी, और उसे प्रेरणा होती है कि मैं वहां जाऊं। और वो पहली बार, द फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी हु गोज टू आयरलैंड एंड इट स्प्रेड्स द मैसेज ऑफ गॉड उस जमीन पर जहां पर स्लेव ट्रेड था, क्रूर थे लोग। ये कहानी हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उसे आवाज आई। ही हर्ड समथिंग, ही हर्ड द विस्पर्स, ही हर्ड दैट सॉफ्ट वॉइस, ही हर्ड दैट वॉइस फ्रॉम बियॉन्ड। उसे वो आवाज आई। वो किसकी आवाज थी? शायद भगवान की। और जब जब जिस जिस के जीवन में ऐसी आवाजें आती है, द डिवाइन कॉल, तब व्यक्ति रुक नहीं सकता। तब वहां से जाग जाता है जहां वो था, जो जीवन वो व्यतीत कर रहा था, जिस तरह की जिंदगी वो जी रहा था, अचानक उस जिंदगी से जाग उठता है और उसे पता चलता है कि जीवन का लक्ष्य तो कुछ और है। और ये मैं क्या कर रहा हूं, कहां भाग रहा हूं, किस और भाग रहा हूं, किस लिए भाग रहा हूं। उसी तरह भारत के इतिहास में भी ऐसा एक दूसरा व्यक्ति है। 1905 जुलाई, बंगाल का पार्टीशन हुआ, लॉर्ड कर्जन। 1906 अलीपुर केन्स कॉन्स्पिरसी हुई, उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसमें से एक था अरविंद घोष, जो कि बहुत क्रांतिकारी था। ऐसी ऐसी चीजें लिखता था, आग लग जाए जिससे, क्रांति का मार्ग लिया था। बचपन बहुत ब्रिलियंट था, विदेश में पढ़ाई की थी, भारत लौटा था, बड़ी बड़ी एग्जाम दी थी, परंतु जब पता चला कि मेरे जीवन का लक्ष्य इनके विरुद्ध विद्रोह करना है, तब जीवन परिवर्तन हो गया, क्रांतिकारी बन गया। और जब जेल गया 1908 से लेकर 1909 तक, 1 साल तक जेल में था, और इस जेल में कुछ और ही हो गया। वो व्यक्ति जो ब्रिटिश के विरुद्ध लिखता था, वो व्यक्ति जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय था, अचानक से मौन हो गया। अचानक से उस अलीपुर सेंट्रल जेल में एक आत्मक्रांति घटित हो गई, और जब वहां से निकला तब वो क्रांतिकारी नहीं था। अब ही हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल स्ट्रगल, अब वो कुछ और बन गया, क्योंकि उस जेल में, उस एकांत में, उस सेल में बैठकर एक रिवॉल्यूशन हो गया। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बाद में लिखा, आई सॉ द विजन ऑफ विवेकानंद ऑलमोस्ट एवरी डे फॉर 15 डेज एंड ही स्पोक टू मी एंड आई फेल्ट हिज प्रेजेंस। जब वो निकले बाहर, देन ही वॉज एज आई सेड पॉलिटिकल वैराग्य आ गया। एक दो जगह गए, ब्रिटिश वेर स्टिल आफ्टर हिम। He went to Pondicherry, which was a French colony. वहां ब्रिटिश नहीं पहुंच सके, और वहां पर एक नया जीवन आरंभ हुआ। ये कैसे हुआ? उसका तो मार्ग दूसरा था, हिंसा का, लड़ाई का, संघर्ष का। अचानक उस जेल में 1 साल में व्यक्ति अंतर्मुखी हो गया और एक आवाज आई, फिर से एक विस्पर, फिर से एक सरगोशी, फिर से एक धीमी आवाज, और वो आवाज शायद भगवान की आवाज थी। दैट वॉज द कॉल डिवाइन। क्या हमें भी कोई ऐसी आवाज आई है जो हमें मजबूर कर दे रुकने के लिए, जो हमें शांत कर दे, एकाग्र कर दे? कहां भाग रहे हो एंड वाय, क्यों भाग रहे हो, और सब कुछ होते हुए ये खालीपन क्यों है? पैसा है, घर है, रिश्ते हैं, स्टेटस है, सुख सुविधाएं है, एंड येट देयर इज अ वैक्यूम। सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन क्यों? शायद शायद आत्मा को किसी और चीज की खोज है। आत्मा अनंत है, सोल इज इन्फिनिट। अनंत की प्यास केवल अनंत ही बुझा सकता है। इस संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सुख, कोई भी सुविधा, इस संसार का कोई रिश्ता, इस संसार का कोई संबंध, स्टेटस, धन दौलत, शायद इसकी प्यास नहीं बुझा पाता। इसलिए आत्मा अतृप्त रह जाती है, खाली रह जाती है। एक साइंटिस्ट ने बहुत अच्छी बात लिखी है, I have spent my life in atoms and molecules. I have spent my life in researching atoms and molecules. But towards the end of this life, I feel life has slipped through my fingers. सारा जीवन संशोधन में लगा दिया, पर क्यों ऐसा लग रहा है कि जीवन अतृप्त ही रह गया है, जीवन खाली ही रह गया, एक स्पिरिचुअल वैक्यूम है जो कोई नहीं भर पाया। और वो वैक्यूम केवल और केवल एक ही चीज भर सकती है, और वो है परमात्मा प्रेम, और वो है उस प्रभु की तलाश, और वो है अध्यात्म, और वो है स्पिरिचुअलिटी। एंड स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट बुक्स, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट डॉगमास, एंड स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट रिलीजन, एंड स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट स्क्रिप्चर्स, एंड स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट माई रिलीजन एंड योर रिलीजन। इट्स नॉट अबाउट फिक्स्ड टेनेट्स, प्रिंसिपल्स। इन वन वर्ड, स्पिरिचुअलिटी मीन्स रियलाइजेशन। अनुभव क्या हुआ? अगर अनुभव ही नहीं है तो धर्म है ही नहीं। धर्म की एक ही शब्द में परिभाषा है, धर्म अर्थात अनुभूति। सब कुछ पा लिया परंतु अनुभव नहीं है, जीवन में भटक रहे हैं। प्यास है जो मिटती नहीं, बुद्धि है जो भटकती रहती है। क्या करें, कैसे इस प्यास को मिटाए? और आप सब जो यहां आए हैं बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि जिस स्थान पर आप आए हैं ये बहुत असाधारण सा स्थान है। कितने आना चाहते थे, शायद समय पर कैंसिल हो गए, गिने चुने यहां पहुंचे। और यहां का जो वायुमंडल है बहुत दिव्य है। कल आप ऊपर जाएंगे पांडव भवन, आज ही जाएंगे। अच्छा, वहां का वायुमंडल तो इससे भी अधिक अलौकिक, इससे भी अधिक शक्तिशाली। 1960s या 70s में एक टीम आई थी रशिया से पांडव भवन में, जो आज शाम को आप देखेंगे। वहां एक कुटिया है, एक कमरा है, शांति स्तंभ है और हिस्ट्री हॉल है। वो जो ट्रैक है उसके वाइब्रेशंस चेक किए थे विथ देयर इंस्ट्रूमेंट, और उन्होंने कहा था ये जो जगह है इट हैज गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल प्योर वाइब्रेशंस। अवर मशीन इज नॉट वर्किंग हियर एंड दोज आर द वाइब्रेशंस ऑफ प्योरिटी एंड दैट दोज आर द वाइब्रेशंस ऑफ तपस्या जो वहां है। तो जीवन की ये जो प्यास है ये तभी मिटेगी जब आत्मा भरपूर होगी, तब तक नहीं मिट सकती। विस्पर्स फ्रॉम बियॉन्ड अर्थात सॉफ्ट वॉइसेस, द डिवाइन कॉल, ये कॉल जब तक नहीं आता है व्यक्ति रुकता नहीं। एक दूसरा उदाहरण ऐसा ही है सेंट फ्रांसिस का। वो मिलिट्री में था, अभी शादी होने वाली थी उसकी, जा रहा था, अचानक जाते जाते एक आवाज आती है, फ्रांसिस फ्रांसिस फ्रांसिस। वो पीछे मुड़ के देखता है, कोई भी नहीं दिखाई देता है, अपने घोड़े को ले जाता है, पानी पिलाता है, फिर से वो आवाज आती है, फ्रांसिस फ्रांसिस फ्रांसिस। वो देखता है कौन पुकार रहा है मुझे, और वो आवाज उससे कहती है, गो गो एंड रिपेयर माय हाउस विच इज इन रूइंस। कौन सा घर और कौन सा जर्जर हो चुका है उसे समझ नहीं आता है। बीच से घर वापस आता है जो कि लड़ाई लड़ने जा रहा था अपने देश के लिए, एसीसी के लिए। वहां का राजा, उसके माँ बाप बहुत डांटते हैं उसको, क्या कर दिया तुमने, भाग के आ गए कायर, जेल में डाल दिया जाता है। वहां एक सूक्ष्म परिवर्तन होता है, वही मौन, वही एकांत, और उस एकांत में और उस मौन में एक नई क्रांति होती है। और जब निकलता है तो ढूंढने लगता है वो कौन सा घर है जो मुझे रिपेयर करना है, और देखता है एक चर्च है, खंडहर बना है, उसका जीर्णोद्धार चालू करता है। उसके पास कुछ नहीं रहता है, और धीरे 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 कहां वो जा रहा था और कहां वो संत बन जाता है। ये एक तीसरा उदाहरण है ऐसे व्यक्ति का जिसे एक आवाज सुनाई दी, जिस आवाज ने उसको कहा, ये कर ये कर ये कर, तुझे ये करना है, कम ऑन क्लैप्स माय हैंड एंड कम, कम ऑन क्लैप्स माय हैंड एंड कम, कम ऑन क्लैप्स माय हैंड एंड कम। कहां आऊं पता नहीं, पर वो आवाज कह रही, आजा, मैं पुकार रहा हूं। और हर व्यक्ति को, हर आत्मा को अपने जीवन में एक न एक दिन ऐसी आवाज जरूर आती है। ये आवाज है इनर अंतस चेतना की, इनर कॉन्शियंस की, ये आवाज है उस डिवाइन की, ये आवाज है उस डिवाइन प्रोविडेंस की, ये आवाज है उस बियॉन्ड की। एंड ईच वन ऑफ अस हैज टू लिसन टू दैट विस्पर, पर उसके लिए हमें अपने मन को तैयार करना होगा। कई लोग कहते हैं हमें वो आवाज अब तक नहीं आई, कब आएगी न मालूम। वो आ गई परंतु शायद हमने सुनी ही नहीं, वो तो खटखट करके गई परंतु हम कहीं और लगे हुए थे, इसके लिए शायद हमने वो नहीं सुनी। एक व्यक्ति इतना दुखी हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है जीवन में, पत्नी मर गई, जॉब छूट गया, बच्चा छोड़ के चला गया, एक प्रीचर के पास जाता है, एक धर्मावलंबी व्यक्ति के पास जो कि अपनी चेयर पर आराम से बैठा है, उसको पूछता है मैं क्या करूं, जीवन में दुख है। वो जो गुरु होता है एकदम धीमे शब्द में कुछ कहता है, वो व्यक्ति कहता है क्या कहा आपने, मैंने सुना नहीं। वो गुरु फिर कहता है एकदम धीरे शब्दों में, वो कहता है मैंने नहीं सुना, क्या कहा आपने। वो और नजदीक आता है, और नजदीक आता है, उसके पास आके बैठता है, और तब वो गुरु कहता है कभी कभी भगवान बहुत धीरे जब बोलता है तो तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, तुम उसकी आवाज हमेशा नहीं सुन सकते। और नहीं क्यों सुन सकते, क्योंकि तुम उससे बहुत दूर हो। जितना जितना उसके नजदीक जाएंगे उसकी आवाज सुनाई देगी, और अपने आप इंट्यूशन होगा, द सिक्स्थ सेंस, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, अपने आप पता चलेगा ये करो वो नहीं करो, यहां जाओ वहां नहीं जाओ। तो ये जो विस्पर्स है हर एक को सुनना है। कल हमने चर्चा की थी अवचेतन मन की, सात बातें उसमें बताई थी। इस विस्पर को सुनने के लिए भी सात चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहली बात, एक दैवी असंतोष, डिवाइन डिस्कंटेंट। Complacency is the enemy of success or progress. बस बैठे हैं, सब कुछ पा लिया, सब कुछ हो गया, अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। This complacency is the enemy of progress. इसके लिए आध्यात्मिक मार्ग में बहुत आगे बढ़ना है या अपने आप को जानना है, उस विस्पर को सुनना है, तो सबसे पहली जो चीज चाहिए कि अब तक हमने जो पाया, अब तक हमने जो कुछ किया, अब तक हमारे पास जो है, इन सब में कहीं ना कहीं उस तरीके का नहीं परंतु एक दैवीय असंतोष है, दुख के कारण नहीं, दर्द के कारण नहीं, परंतु डिवाइन डिस्कंटेंट इसको कहा जाता है, कि इससे भी परे कुछ और जीवन है, इससे भी परे कुछ और पाने का है। यही सब कुछ नहीं है जो हमने पा लिया, पैसा है, धन है, संपत्ति है, सब है, परंतु इसके परे भी और भी कुछ है जो पाना बाकी है। जब तक वो डिवाइन डिस्कंटेंट की फीलिंग नहीं आएगी, तब तक आगे नहीं बढ़ती है आत्मा। उसे लगे कि ये जो कुछ पाया है इसके परे भी कुछ और पाना है। यहां पर कुछ समय पहले एक पुलिस कमिश्नर आए थे, यहीं रुके थे मनमोहिनी में, और उनको जाना था शांतिवन। उनकी वापसी का दिन था और बसेस निकल चुकी थी, वो वेट कर रहे थे। तो एक भाई, यहाँ का सेवाधारी कोई भाई, साइकिल लेके आ गया वहां से। उसने कहा आपको कहाँ जाना है? उसको पता नहीं है कमिश्नर साहब है। उन्होंने कहा मुझे वहां शांतिवन जाना है। उसने कहा बैठो मेरे साइकिल के डंडे पर, और इतने सहज भाव से कहा, उस साहब जी को बिठाया और अपनी बातें सुनाते सुनाते ले गए। उन्होंने अपना अनुभव सुनाया, वहां लोग मुझसे डरते डिपार्टमेंट में, और यहां ये भाई ऐसी सहज बातें कर रहा है, और उसको देखकर ऐसा लगा कि मेरे जीवन में खालीपन है। जीवन है तो ये है, कितना खुश है ये, कितनी खुशी है इसके चेहरे में, आनंद से भरपूर है, कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं, कोई अहंकार नहीं है। He was touched to the core. एकदम से पता चला कि जो कुछ मैंने किया है, पाया है, खाली है। Divine discontent, कुछ और करना है, कुछ और पाना है, जो इसके पास है, जो मेरे पास नहीं है। उसे तो यह भी नहीं पता यहां कोई प्रोग्राम चालू था। उस भाई को, वो तो बस अपना जा रहा था, उनका सामान पीछे रखा और डंडे पे बिठा के ले गए यहां से वहां तक, अपनी बातें सुनाते सुनाते। दूसरा, इंटेंस डिजायर। एक इंटेंस डिजायर, एक इच्छा, क्या है क्या है क्या है, मुझे जानना है सत्य को। वन शुड बी मैड टू नो द ट्रूथ ऑफ लाइफ। क्या करे, कितनी धर्म संस्थाओं में जाए, कितनी किताबें पढ़े, खाली ही रहता है। किस कोई कुछ कहता है, कोई कुछ करता है। एवरी पॉटर प्रेजेस इज ओन पॉट। हर एक कहता है हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। व्हाट इज द ट्रूथ? एंड वन थिंग आई विल टेल यू, डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग विच हैज बीन टोल्ड टू यू बाय एनीबडी। यहां पर बैठकर अगर हमें ये सुनने को मिला, ये आत्मा है, ये परमात्मा है, ये सृष्टि चक्र है, डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग। फाइंड द ट्रूथ योरसेल्फ। Don't accept anything because it is said by somebody. Don't accept anything because it is written somewhere. Don't accept anything because it has been hallowed by traditions. Don't accept anything because it has been told by some spiritual genius. No. Find the truth yourself. हम खुद उसकी खोज करेंगे, हम खुद जानेंगे वास्तव में क्या है। किसी के कहने से नहीं, थोपा हुआ नहीं हो सकता यह ज्ञान। अनुभव, मेरा अपना अनुभव क्या है। तो इंटेंस डिजायर शुड राइज इन द हार्ट टू नो। थर्ड, सर्च, खोज। खोज चालू करनी है जीवन के सत्य तक पहुंचने की, और ये हर एक की अपनी खोज है, इसमें कोई किसी का भी साथी नहीं है। क्योंकि हम जो है, हमारे से ज्यादा और हमें कोई नहीं जानता। हमें अपनी ही खोज करनी है, अपने आप को ही ढूंढना है, क्योंकि मैं खुद ही खो गया हूं। एक अमेरिकन एक्टर ने लिखा है, फिल्म एक्टर ने, अपनी ऑटोबायोग्राफी में, इन माय लाइफ आई हैव एक्टेड, आई हैव प्लेड सो मेनी रोल्स, समटाइम्स आई एम शेक्सपियर्स जूलियस रोमियो, समटाइम्स हैमलेट। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इन सब में से कौन हूं। इतने चेहरे, इतने मुखड़े पहन रखे हैं, इतने मास्क पहने हैं, कि इनमें से मुझे ये नहीं समझ रहा है मैं हूं कौन। मैं खो गया हूं, मुझे अपने आप को ही खोजना है। तो थर्ड स्टेप इज सर्च। किसकी खोज? अपनी ही खोज। क्योंकि मैं ही खो गया हूं। जो मैं दुनिया के सामने दिखा रहा हूं उनको, वो मैं शायद नहीं हूं। मैं तो कुछ और ही हूं। जो मैंने छुपा के रखा है दुनिया के सामने, जो दिखा रहा हूं, वो आडंबर है, एक धोखा है। आई वॉश इट, आई एम जस्ट, इट इज अ हुडविंक। कहते हैं लंदन में एक फोटोग्राफी की शॉप खुली, वहां पे लिखा था
1, 2, 3। पहला फोटो ₹15 का, $15, दूसरा 20, तीसरा 25। एक गांव का व्यक्ति आया, कहने लगा इसमें अंतर क्या है। उसने कहा ये जो पहला फोटो है ना वो तुम्हारा फोटो है जैसे तुम हो, दूसरा वो फोटो निकालेंगे हम जो तुम चाहते हो दुनिया देखे तुमको, और तीसरा वो जैसे तुम बनना चाहते हो। तो वो कहता है मैं कौन सा लू, पूछना क्या है, सब लोग तीसरे नंबर का ही लेते हैं, पहला तो कोई लेता नहीं है, जैसे हम हैं। हर एक क्या दिखाना चाहता है, मैं कैसा हूं, वो वाला फोटो। तो खोज करनी है किसकी, अपनी खोज करनी है, उसकी जो इस संसार का मालिक है। खोज करनी है इस जगत को समझने की, व्हाट इज दिस वर्ल्ड, व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग एज दे आर हैपनिंग, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हैपनिंग्स, ऐसा ही क्यों होता है, व्हाट इज इट, What is this mystery? What is this enigma? क्या रहस्य है ये? तो तीसरा है खोज, चौथा है साइलेंस। अगर वो आवाज सुननी है तो यहां की जो हलचल है और शोरगुल है और जो आवाज है उसको शांत करना पड़ेगा। जब तक मौन में आत्मा प्रवेश नहीं करती कोई आवाज उसको सुनाई नहीं देगी, कोई टचिंग्स नहीं होगी ऊपर से, क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो डिवाइन विस्पर्स कभी सुनाई ही नहीं देगी। महात्मा गांधी ने लिखा है 6 अगस्त 1925, यंग इंडिया। मैं अफ्रीका में था, एक मठ में गया, मठ का नाम था ट्रैपिस्ट मोनेस्ट्री। वहां देखा सभी मौन में है, ऑल इनमेट्स आर इन साइलेंस। वो हेड ऑफ द मोनेस्ट्री के पास गए, पूछने लगे व्हाई दिस रूल हियर, How can person survive without speaking? वो हेड ऑफ द मोनेस्ट्री ने कहा सी यंग मैन, वी ह्यूमन बींग्स आर सो फ्रेल क्रिएचर्स, वी रियली डू नॉट नो वॉट टू स्पीक एंड वॉट नॉट टू स्पीक, एंड वेन वी स्पीक वी मोर ऑफन देन नॉट स्पीक दैट विच शुड नॉट हैव बीन स्पोकन, दैट्स वाई वी हैव मेड अ रूल ऑफ दिस मोनेस्ट्री दैट हूएवर एंटर्स दिस प्लेस विल ऑब्जर्व इटर्नल साइलेंस टिल द टाइम ही इज हियर, because in that silence he can listen to the soft inner voice which is within us. tab tak wo sunai nahi deti aawaz. to chauthi baat, apni vyast dincharya mein kuch samay aisa nikalna hai jisme hum maun rahe, aur the best time is morning, jisme kam se kam 8 baje tak 9 baje tak sansar, newspaper, digital world, इन सब से हम अलग रहे और अपने आप से बातें करें। गो फॉर अ लॉन्ग वॉक 1 आवर इन प्रकृति के सानिध्य में, अपने आप से बातें करना है, प्रकृति से बात करना है, उससे बात करना है जो इस संसार का नियंता है, अपने आप को ही देखना है मैं कहाँ हूं, मेरे से ये गलतियां क्यों हो रही है, जीवन किस ओर भाग रहा है। साइलेंस डजंट मीन जस्ट टू कीप मम, साइलेंस मीन्स स्वचिंतन, साइलेंस मीन्स सेल्फ टॉक, स्वदर्शन, सेल्फ एनालिसिस, सोल सर्चिंग, सेल्फ अकाउंटिंग। अगला सॉलिट्यूड, एकांत। व्यक्ति को डर लगता है एकांत में रहने का, उसे कोई ना कोई चाहिए, किस लिए, बातें करने के लिए। बट द रियल प्रोग्रेस टेक्स प्लेस ओनली इन द पीरियड्स ऑफ साइलेंस एंड सॉलिट्यूड। जर्मन में एक बहुत बड़ा मिस्टिक कवि हुआ था इकहार्ट, उसका स्वभाव था एकांत में बैठकर अपने आप से बातें करना या भगवान से बातें करना। एक बार उसके दोस्त गुजर रहे थे, उन्होंने देखा बेचारा अकेला बैठा है, चलो इसको कंपनी दे। वो आते हैं और कहते हैं आई हैव कम टू गिव यू कंपनी। वो कहता है आई वॉज एंजॉइंग द कंपनी ऑफ द सुप्रीम, यू हैव मेड मी विदाउट कंपनी नाउ बाय यूर कमिंग। सीख सॉलिट्यूड 24 आवर्स में, ऐसे कुछ समय निकालना है जिसमें हम मौन में रहे और एकांत में रहे, कंप्लीट एकांत। छत पे चले जाओ, किसी गार्डन में चले जाओ, किसी झील, कोई समंदर, कहीं पर भी जहां बैठकर अपने आप से बातें करें। इस संस्था के जो संस्थापक थे ब्रह्मा बाबा, उनकी एक आदत थी, एकांत में बैठते थे लंबा लंबा समय, बातें करते थे अपने आप से, पूछते थे अपने आप को स्व से रूरिहान, हे मन कहां जा रहा है। इस संस्था की एक बहुत ऊंची हस्ती है, जगदम्बा सरस्वती। उनसे दादी जानकी जब बहुत जवान थे तब पूछा था दादी जानकी ने, मम्मा ये मन को कैसे वश में करे। मम्मा ने कहा था कि मन जो है ना बेबी है, इसको समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, उसको बैठ के समझाओ कि ये ऐसा करना है, ये तुझे नहीं करना है, ये तुझे करना है, तो वो समझेगा धीरे धीरे बहुत प्यार से। जबरदस्ती करेंगे उसको, कहो ये नहीं, तो वो बिल्कुल वही करेगा जो उसको नहीं कहा गया। माइंड इज वेरी चाइल्ड, स्मॉल चाइल्ड, एक्सप्लेन इट विथ लव। द नेक्स्ट थिंग इज प्यूरिटी। यहां पर आते ही आप सब ने अनुभव किया होगा कि यहां का वायुमंडल बहुत पावरफुल है। क्यों? एनी रीजन? एनी रीजन? यह एक ऐसी एनर्जी है कि यहां ओशन है, जो भी आ जाए शांत हो जाते। कितने ऐसे लोग आए जो विरोधी थे, पर यहां आते ही शांत, ठंडे हो गए। कुछ है यहां। एक बार एक शिविर में एक बहन एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब को लेके आई थी। उनकी आदत ही वाज अ चेन स्मोकर सर्जन। उसने कहा था मैं आई विल कम टू ब्रह्मा कुमारी बट ऑन वन कंडीशन, आई हैव टू स्मोक एवरी डे। तो उस बहन ने कहा कि हाँ जब तुम आपको लगे तो मुझे बता देना, आई विल टेक यू आउटसाइड द कैंपस एंड देयर यू स्मोक। पहले दिन आए, शिविर चालू हुआ, ऐसा ही सेशंस। फिर उनको लगा एक घंटे के बाद, ही टोल्ड द सिस्टर, सिस्टर टुक हिम आउट एंड ही स्मोक्ड एंड केम आउट, केम इनसाइड 2-3 times इन वन डे। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग अमृत वेला सेशन हुआ। फिर भी उसने बाद में नाश्ते के बाद एक बार बोला, दिन भर सेशन सुना, तीसरे दिन हिम्मत ही नहीं हुई, चुप ही हो गया। और शाम होते होते ऐसी एक सभा में बैठे बैठे ही प्रतिज्ञा कर ली कि आज से स्मोकिंग को मैं यही छोड़ता हूं, और छोड़ ही दिया हमेशा के लिए। ही वॉज अ चेन स्मोकर विदाउट एनी विड्रॉल सिम्टम्स, हमेशा के लिए छोड़ दिया। ऐसा पावरफुल वायुमंडल, ऐसा एक ऑरा है यहां पर, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की हुई है, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ प्यूरिटी। इतनी सारी ब्रह्मचारी आत्माएं, इतने यंग लोग, दे हैव सरेंडर्ड देयर लाइव्स फॉर द ग्रेट कॉज। This land is suffused with the divine energy and divine purity. इसके लिए nobody can remain immune, कोई बचा नहीं पाएगा अपने आप को। देख लो, तीर लगेगा, मौन तीर है, ऐसा लगेगा आर पार खून बहेगा, दिखाई नहीं देगा, पर घायल तो सबको होना ही है, क्योंकि ईश्वरीय तीर है, डिवाइन लव का ये एरो है। और लास्ट थिंग डिस्पैशन, वैराग्य, स्लाइटली डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। जितना हम संसार से अटैच है, ये वॉइस हमको सुनाई नहीं देती है। एज मच एज वी आर लॉस्ट इन द डिफरेंट थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, वी डोंट लिसन टू दैट वॉइस। वी कैन लिसन टू दैट वॉइस ओनली व्हेन वी आर स्लाइटली डिटैच्ड। सो लर्न द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। जब तक वो डिटैचमेंट नहीं, वी डोंट प्रोग्रेस। टू मच इन्वॉल्वमेंट हर चीज में। इन्वॉल्वमेंट इज गुड, बट देन यू शुड ऑल्सो नो द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। एट वन मोमेंट यू आर वर्किंग समवेयर, कम आउट। अनदर मोमेंट यू आर प्रेइंग, कम आउट। अनदर मोमेंट यू आर मेडिटेटिंग, कम आउट। अनदर मोमेंट अगेन यू आर सर्विंग, कम आउट। अनदर मोमेंट यू आर ट्रैवलिंग, कम आउट। अगेन यू आर काम डूइंग नथिंग। Detachment. The more powerful our detachment is, the more powerful we become. The more we are attached, the more expectations, the more the sorrow, the more the sufferings, the more the breaking of hearts. So learn this art of detachment. And the best method to detach is to get attached somewhere. And the best thing to attach our mind is God. तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे और अपने आप को समर्पित कर देंगे उस परम के आगे कि जीवन कहाँ जा रहा है, कहाँ बह रहा है, और देखना है जैसे वो भगवान है जिसने मुझे यहाँ स्थान पर पुकारा है, वो डिवाइन वॉइस मैंने सुन ली है, अब मैं चूकूंगा नहीं।
विश्वास मेरा जो मजबूत नहीं है, मन में अंधेरा घना है। विश्वास मेरा जो मजबूत नहीं है, मन में अंधेरा घना है। फिर भी प्रभु मैं बुलाता हूँ दिल में, फिर भी प्रभु मैं बुलाता हूँ दिल में, बिन तेरे जाऊँ कहाँ, बिन तेरे जाऊँ कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ।
मन को संपूर्ण समर्पित करना है, ये जो जीवन तन्हा गुजर रहा है, कहाँ है वो, कहाँ है वो परम, कहाँ है वो महबूब जिसके बिना सब कुछ सुना, सब पा लिया फिर भी अतृप्ति है, सब मिल गया फिर भी प्यास बाकी है, और जीवन की ये प्यास केवल वही बुझा सकता है, हृदय में उसको प्रवेश देना है। वो द्वार पर खड़ा है, लेट मी हियर द विस्पर्स व्हाट ही इज सेइंग टू मी, व्हाट ही वांट्स मी टू डू। Let me enter into the cave of silence. The divine solitude. In the stillness of heart, let me listen to that voice divine, जो बार बार मुझे कहती है आ जाओ आ जाओ, स्टॉप दिस वाइल्ड गूस चेस, कम बैक टू मी। रुकना है कुछ समय, कुछ पल, इस पवित्र स्थान पर आना व्यर्थ ना जाए। यहां आना जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बन जाए। अब तक जो जीवन संसार की ओर जा रहा था, अब वो भगवान की ओर जाए। Inner feeling of peace, bliss, happiness, gratitude. भाग्य ने करवट बदली है, भगवान ने स्वयं पुकारा है। अचानक मन ये शांत हुआ है और एक खोज का आरंभ, एक इच्छा जगी है। इस संसार से सूक्ष्म वैराग आया है, पवित्रता खींच रही है। हमें भी अपना जीवन ऐसा ही दिव्य बनाना है, सो प्योर सो डिवाइन, जैसा जीवन हम यहाँ के लोगों में देख रहे हैं। सच सेल्फलेसनेस, सच प्यूरिटी, सच पीस, सच ब्लिस, सच हैप्पीनेस। और इसी संकल्प से मैं अपने मन को तैयार करता हूं कि यहां से जाने के बाद अब जीवन वो ना रहेगा जो पहले था, उसमें प्यूरिटी होगी, अब अनुशासन होगा, परमात्मा के लिए जगह होगी, स्वयं के लिए समय। वो जो मैं खो गया हूं, वो जो मुखौटे पहन के घूम रहा है, मैं नहीं, मैं कुछ और हूं। स्वयं की खोज, उस भगवान की खोज, इस सृष्टि को समझना है, इस चक्र को समझना है। एक नया जीवन, एक नया उमंग, एक नया उत्साह। ओम शांति।
दुनिया रोती है अपनी पीड़ा में, मैं अपने दुख और गम में। दुनिया रोती है अपनी पीड़ा में, मैं अपने दुख और गम में। पुकार सुनकर तुम आ जाओ प्रभु, पुकार सुनकर तुम आ जाओ प्रभु। अधूरा मैं तेरे बिना, अधूरा मैं तेरे बिना। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। तुम्हें ढूंढू कहाँ, तुम्हें खोजू कहाँ, तुम्हें ढूंढू कहाँ, तुम्हें खोजू कहाँ। अधूरा मैं तेरे बिना, कहाँ रहते हो प्रभु, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ। कहाँ रहते हो ये तुम बताओ, कहाँ रहते हो ये तुम बताओ।